महाबंध पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर एक। ओम नमः सिद्धे बंधतत्व प्रकाशकम् महाधवल विख्यातम् महाबंधम नमाम्यहम्। यह श्री भगवान भूतबलि भट्टारक प्रणीत महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसमें चौथी पुस्तक में तीसरा अनुभाग बंध अधिकार चल रहा है और आज से हम उसकी यहाँ शुरुआत करते हैं। प्रथम पृष्ठ पर आते हैं, हम विषय परिचय को देखेंगे। आवाज मुझे जरा कम लग रही है। विषय परिचय निकालना। उसके पहले उनको सामने दो प्रतियां थी, उसके आधार से उन्होंने यहाँ शुरुआत में जो कुछ दोनों प्रतियों में डिफरेंस है, पाठ भेद, वो भी यहाँ लिखा है। मिला क्या संपादकीय के पांच नंबर पृष्ठ पर, पांच से बारह तक वो चली। अभी विषय परिचय यहाँ देखते हैं। बंध के चार भेद हैं, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाव बंध और प्रदेश बंध। इनमें से प्रस्तुत यानी जो अभी चल रहे वो प्रस्तुत संस्करण में अनुभाव बंध का विचार किया गया है। अनुभाव का अर्थ है फलदान शक्ति, कषायों का शुभ और अशुभ जैसा परिणाम होता है उसके कर्मों में उसी प्रकार फलदान शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। योग के निमित्त से गुणस्थान परिपाटी के अनुसार यथासंभव ज्ञानावरणादि आठ मूल प्रकृतियों का और मति ज्ञानावरण आदि उत्तर प्रकृतियों का बंध होता है और कषाय के अनुसार उनमें न्यूनाधिक शक्ति का निर्माण होता है। योग के अनुसार प्रकृति बंध होता है और कषाय के अनुसार भी यहाँ शक्ति की बात है ना, स्थिति भी उसकी अधीनाधिक होती है। यहाँ तो विषय अपना अनुभाग संबंधी है। न्यूनाधिक यानी कम अधिक, यह न्यूनाधिक शक्ति ही अनुभाग है, यानी कर्म की फलदान शक्ति ही अनुभाग है। प्रत्येक कर्म में उसकी प्रकृति के अनुसार ही अनुभाग शक्ति पड़ती है, क्योंकि हरेक कर्म की अपनी अपनी विशेषता है। प्रकृति स्वभाव को देखें, वो कैसा है, हम कहें गर्म मिजाज का है, ऐसे प्रकृति कैसी है, तो उसके अनुसार उसके नाम भी है, मति ज्ञानावरण है, श्रुति ज्ञानावरण है। इसलिए हम प्रकृति को सामान्य और अनुभाव को विशेष कह सकते हैं। यद्यपि ज्ञानावरण के मति ज्ञानावरण आदि विशेष ही है, क्या कहते हैं, ज्ञानावरण जब कहेंगे इन जनरल है और उसके भेद है, उसके जो भेद उनको विशेष कहते हैं, तो मति ज्ञानावरण उसका विशेष हुआ। पर अपनी अपनी फलदान शक्ति के तारतम्य की अपेक्षा ये भी सामान्य ही है, यानी किसकी कितनी फलदान शक्ति है उसके लिए तो ये सामान्य कहेंगे और उसमें जो अनुभागों के डिफरेंस होगी उसको विशेष कहेंगे। जैसे मति ज्ञानावरण ये जनरल टर्म होगी, पर मति ज्ञानावरण में भी कोई मंद अनुभाग वाला है, कोई तीव्र अनुभाग वाला है, तो उसके वो विशेष और हो जाएगा। पहले तो हमने प्रकृति की अपेक्षा भेद किए, मूल प्रकृति, उत्तर प्रकृति। एक एक उत्तर प्रकृति में भी अनुभव की अपेक्षा जो कोई डिफरेंसेस है उसको विशेष कहेंगे। प्रकृति बंध में कहां कितनी शक्ति प्राप्त हुई है इस प्रकार की विशेषता नहीं उत्पन्न होती, यानी केवल उसके उत्तर प्रकृतियों के भेद ही बताए जाते हैं, प्रकृतियों के नाम बताए जाते हैं, तो उन प्रकृतियों में कहां कितना हीनाधिक होता है उसकी चर्चा तो नहीं होती। होता ही है, अनुभाग भी हीनाधिक बनता है। अब उसकी चर्चा इस अनुयोग में करेंगे, इस पुस्तक में। पहले तो हमने प्रकृति की बात की, फिर स्थिति के लिए दूसरा तीसरा दो वॉल्यूम में पुस्तकें देखी, अब चौथी पुस्तक में अनुभाग की अपेक्षा से विशेषताओं की बात चलेगी। यह विशेषता अनुभाग बंध से ही प्राप्त होती है। जीव उत्तर काल में जो शुभ या अशुभ कर्मों के फल को भोगता है, उत्तर काल क्यों कहा? क्योंकि बंध काल वो पूर्व का काल, और जब उसका बंधे हुए कर्मों का उदय काल है तो उत्तर है ना, आफ्टरवर्ड्स। उसका कारण मुख्यतः यह अनुभाग बंध ही है, यानी जो शुभ या अशुभ कर्मों का फल हीनाधिक जो मिलता है उसका कारण क्या? अनुभाग बंध। और अनुभाग बंध का मूल कारण कषाय है, इसलिए कर्म बंध के सब कारणों में कषाय को मुख्य कारण कहा है। यूं तो बंध तत्व का सांगोपांग विचार करने के लिए अनेक बातों पर प्रकाश डालना आवश्यक है, परंतु प्रस्तुत भाग में अनुभाग बंध का ही विचार किया गया है, इसलिए हम एकमात्र इसी का ऊहापोह करेंगे, यानी चर्चा करेंगे। ऊहापोह यानी डिस्कशन, यानी सभी एंगल से उसकी चर्चा। जीव और कर्म स्वतंत्र दो द्रव्य है, उसमें भी जीव अमूर्त है, कर्म मूर्तिक। एक मूर्तिक का अन्य मूर्तिक के साथ बंध अपने स्पर्श गुण के कारण होता है, किंतु अमूर्तिक का मूर्तिक के साथ बंध क्यों होता है? तो बंध तत्व को ठीक तरह से समझने के लिए इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना आवश्यक है। आचार्य कुमकुंद ने इस प्रश्न का समाधान करते हुए कहा है, रत्तो बंधदिकम्मम मुंचदिकम्मम विराग संवत्तो। रत्तो ने रक्त, ने रत यानी रक्त ने क्या, ये जो राग वाला जीव, रागी जीव। रत्तो यानी रागी जीव बंधदिकम्मम, कम्म को बांधता है, यानी राग यानी कषाय के कारण, राग और द्वेष के कारण। यह लिखा है नीचे, देखो, आशय की राग और द्वेष के कारण जीव कर्म से बंध को प्राप्त होता है। मुंचद यानी छुड़ता है, क्यों? विराग संपत्तो, विरागता से युक्त होने पर वो उसको छोड़ता है, यानी उससे मुक्त हो जाता है। इस प्रकार यद्यपि इस वचन से हमें यह उत्तर तो मिल जाता है कि जीव का बंध किस कारण से होता है, फिर भी यह शंका बनी ही रहती है कि स्पर्श गुण के अभाव में जीव का पुद्गल से संबंध कैसे होता है, है ना? एक अरूपी एक रूपी है, रूपी रूपी से वो स्पर्श गुण के कारण बंध होता है, स्निग्ध रुक्ष के डिफरेंस के कारण। तो यह प्रश्न उठता है, क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ स्पर्श विशेष का नाम ही बंध है। स्पर्श विशेष यानी स्पर्श गुण में जो कुछ विशेषताएं बनती है, पुद्गल में स्पर्श गुण होता है, इसलिए उसका अन्य द्रव्य के साथ बंध बन जाता है। अन्य भी किसे? पुद्गल के साथ। पर जीव द्रव्य में इस गुण का अभाव होने से यह नहीं बन सकता। यदि यह कहा जाए कि बंध पुद्गल का पुद्गल से होता है और जीव उसमें अनुप्रविष्ट रहता है, अनुप्रविष्ट यानी प्रवेश नहीं करता, तो प्रश्न यह होता है, जीव पुद्गल में अनुप्रविष्ट क्यों हुआ? यह अनुप्रविष्ट यानी एंटर होना। अच्छा,
प्रवेश
करना, अनुप्रविष्ट रहता है ना उसके साथ वो एक क्षेत्र में रहता है। तो ये फिर प्रश्न होता है कि जीव क्यों उसमें अनुप्रविष्ट हुआ और पुद्गल के स्थानांतरित होने पर वह उसका अनुगमन क्यों करता है, अनुगमन इनटू फॉलो। इस प्रश्न का उत्तर आचार्यों ने यह दिया है, जीव और पुद्गल का बंध अनादि काल से हो रहा है, यानी किसी नया तो बंध है ही नहीं है, वो ऐसे ही अनादि से ही बंधे हुए ही अवस्था में पाए जाते हैं। और इस बंध का मुख्य कारण जीव की अपनी कमजोरी है। कर्म के निमित्त से जीव में योग और कषाय रूप परिणमन होता है, निमित्त की बात है, तो जीव का अपना स्वयं का वह अशुद्ध उपादान। कर्म के निमित्त से जीव में योग और कषाय रूप परिणमन होता है और इस कारण जीव के साथ कर्म संबंध को प्राप्त होता है, यानी जो कर्म है वो जीव के साथ संबंध को प्राप्त होता है, बनता है। यद्यपि जीव में स्पर्श गुण नहीं है, फिर भी जीव में विद्यमान कषाय परिणाम स्पर्श गुण का ही कार्य करता है। क्या कहते हैं देखो, जीव में तो स्पर्श ही नहीं है तो उसके कारण बंध कैसे होगा? तो ये जीव कैसा है, अभी पुराने कर्मों का उदय है और यहाँ जीव के कषाय परिणाम है, राग द्वेष के परिणाम है। तो जैसे पुद्गल पुद्गल के साथ क्यों जुड़ता है, तो स्पर्श गुण के पर्याय के कारण। तो यहाँ कषाय भाव ही वो स्पर्श का कार्य करता है, ये वहां स्पर्श के कारण जुड़ना होता है और यहाँ कषाय के कारण, जिसको हम कहते ना उदाहरण दिया है शास्त्र में, जैसे कपड़ा साफ है तो धूल आकर नहीं चिपक रही है और उसमें कोई तेल का बूंद जैसे ड्रॉप गिर जाए तो क्या होता है, वो स्निग्धता के कारण वहां आकर चिपक जाते हैं। ऐसे जीव में जो राग द्वेष है ना मोहिनी कर्म के उदय में, जीव के हम मोह राग द्वेष हो रहे, वही स्पर्श गुण जैसा कार्य करते उसके कारण वहां कर्म आकर चिपक जाते। जिस प्रकार पुद्गल में स्पर्श गुण के कारण उसका अन्य पुद्गल द्रव्य के साथ बंध होता है, उसी प्रकार जीव में योग और कषाय रूप परिणाम होने के कारण उसका कर्म और नौकर्म के साथ बंध होता है। कर्म तो समझे और नौकर्म यानी शरीर के प्रमाण, किंतु जीव का यह योग और कषाय रूप परिणाम स्वाभाविक न होकर नैमित्तिक है, क्योंकि उसका स्वभाव रूप परिणाम तो है ही नहीं है, वहां तो निमित्त की अपेक्षा है। इसलिए जब तक इस प्रकार के निमित्त का सद्भाव रहता है तभी तक यह बंध प्रक्रिया चलती है, इसके अभाव में नहीं। वहां कर्म का जैसे सिद्ध भगवान को राग द्वेष होते कि नहीं होते, तो वहां वो निमित्त भी नहीं है कर्मों का, जो जो हम उदयिक भाव देखते हैं कर्मों का उदय है वहां पर, वैसे वहां जीव में जो भाव होते हैं, तो जब वो ही नहीं रहे कर्म, निमित्त की ओर से कथन चल रहा हूं। इस प्रकार इस बात का निर्णय हो जाने पर कि जीव का कषाय रूप परिणाम और पुद्गल का स्पर्श गुण मुख्यतः बंध का प्रयोजक है, प्रयोजक है ना उसका कारण है, यहां इन्हीं दोनों के आधार से अनुभाग बंध का विचार किया है। तात्पर्य है कि जीव में जिस मात्रा में कषाय अध्यवसान होता है, मात्रा ने जिस डिग्री में, अभी तक हम दूसरी तीसरी पुस्तक में स्थिति बंध की बात की थी, अंत में वो समुदाहार में क्या लिखा था, स्थिति बंधाध्यवसान स्थान, और यहाँ कषायाध्यवसान स्थान का, ये तो कारणभूत परिणामों की बात है। एक्चुअली स्थिति बंध के लिए भी कहते, परंतु इसमें अनुभाग बंध की बात और ले लेंगे अनुभाग की अपेक्षा है। तो जिस मात्रा में कषायाध्यवसान स्थान होता है कर्म का, उसी मात्रा में जीव के साथ बंध होता है। उसी मात्रा में ने कर्म को उसमें प्रमाण नहीं लेना उसमें, अनुभव आदि की बात नहीं लेना। साधारणतः जीव की कषाय और कारमाण वर्गणाओं का स्पर्श गुण, इन दोनों के कारण बंध को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। यानी कषाय से दो प्रकार का बंध होता है उनके, उसको हम दो प्रकार से कह सकते हैं, बंध तो एक ही हो रहा है, तो उसके दो कैसे भाग किए, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। स्थिति बंध में विवक्षित कर्म का जीव के साथ कितने काल तक संबंध रहता है इसका विचार किया जाता है, और अनुभाग बंध में कर्म का जीव के साथ जो बंध होता है वह विघटन के समय, जिसको हम उदय कहते हैं। बंध एक है बंध और दूसरा है बंध का छूटना, उसको कहेंगे विघटन, उदय में आना। तो विघटन के समय जीव में कितनी मात्रा में और किस प्रकार की क्रिया के होने में सहायक होता है, सहायक यानी निमित्त, क्योंकि जीव के साथ जो बंधा है तो अनुभाग का ही तो फल मिलेगा। कितने काल तक बंधा हुआ अभी आया है उदय में, उससे कुछ नहीं लेना देना। कितनी मात्रा में परमाणु निकलते उससे कुछ नहीं लेना देना। फल यानी निमित्तपना किसका बनता है, तो अनुभाग के उदय का। कितनी डिग्री में अनुभाग का उदय हो रहा है वैसा उसका निमित्त बनेगा। स्थिति तो उतने काल बाद उसका फल मिलेगा,
अनुभाग बंद किया है तो उसका फल तो मिलने ही वाला है।
हाँ मिलेगा, मिलने ही वाला है, क्योंकि बंधने के बाद उसमें बहुत सारे उलट पुलट हो जाती है। अगर उतना ही मिलता ही रहेगा और मिलने ही वाला है कहेंगे तो इसमें से छूटने का रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म बांधा तो है ही और उसका उदय तो आने से रहा, तो उदय आने का हमको वैसा ही बिहेव करना पड़े। तो मिथ्या तो अनादि से बन रहा है, कषाय अनादि से बन रहा है, और उसका उदय तो आता ही रहेगा, हर समय आ रहा है, क्योंकि हर समय हमने बांधा है, तो इसमें से छूटने का मार्ग नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता। किंतु अनंत जीव अब तक सिद्ध हो चुके हैं और कितने ही जीव मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ है, असंख्यात जीव, उसका अर्थ क्या है, यानी वो तो जीव पराधीन नहीं है। उस अनुभाग के उदय में जीव को किस तरह से सोचना है, किस तरह से क्या मोक्ष का मार्ग कैसे प्रकट होता है, उसको तो हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तो केवल उसकी अनुभाग में क्या क्या होता है उसकी चर्चा करें, बाकी द्रव्यानियों के जो हमारे रूल्स है, सिद्धांत है, इनको जानकर भी अपनी भिन्नता जानता है जीव, अपने स्वरूप का स्वभाव का विचार करता है और उस रूप मैं हूं ये उसके निर्णय तक पहुंचता है, अपने में स्थिर होता है, तो इसमें अपने आप कितनी बातें बन जाती है। वो कहां क्या होता है वो विषय अलग, अभी तो हम क्या अनुभाग बंध किसको कहना उसकी शुरू से बात देख रहे हैं। मिथ्या दृष्टि को निमित्त से ही होता है और अपने को नहीं होता, हाँ समय दृष्टि को नहीं होता,
होता।
अरे अरे आप ही फिर कह रहे, मिथ्या दृष्टि को तो निमित्त से होता है, अरे ऐसा तो वो मानता है।
एक जन आए थे वो हमको बोल रहे थे कि जो सच्चे देव गुरु शास्त्र का विरोध है या घातक है वो समय कुछ नहीं हो सकता, ऐसी प्रभु न चल रही है, तो आप भी वैसी बोले अभी भी कुछ कर रहे।
तो उसके विघटन के समय जीव में कितनी मात्रा में और किस प्रकार की क्रिया के होने में, यानी उस अनुभाग का फल जीव में क्या होता है, उसको जीव की क्रिया कहेंगे, सहायक होता है, इस बात का विचार किया जाता है।
मुझे बहुत स्लो लग रही है।
हाँ इस बात को स्पष्ट करने के लिए टाइम बम का उदाहरण उपयुक्त होगा। टाइम बम, इसमें दो बातें दृष्टिगोचर होती है, प्रथम तो उसका नियत समय पर विस्फोट होना, क्योंकि उसमें वो तो कब होगा ये नक्की कर दिया ना उसमें, टाइम सेट कर दिया, और दूसरे विस्फोट के समय अमुक मात्रा में हलचल उत्पन्न करना, वो कितना शक्तिशाली है बम, वो भी उस निर्मिति के समय निश्चित हुआ है। ठीक यही अवस्था कर्मों की है, टाइम बम अच्छा है। कर्म भी नियत समय पर ही आत्मा से अलग होते हैं, और जिस समय अलग होते हैं उस समय वे आत्मा में एक विशेष प्रकार की नियत मात्रा में, नियत यानी निश्चित मात्रा में हलचल उत्पन्न करके ही अलग होते हैं। शास्त्रकारों ने इस हलचल को ही उदय या उदीर्णा शब्दों द्वारा प्रतिपादित किया है। कर्मों का उदय या उदीर्णा जिस क्रम का जितना अनुभव होता है, क्रम का नहीं कर्म का, तदनुरूप ही होता है। क्या कर्मों का उदय या उदीर्णा
जिस क्रम से,
जिस कर्म का जितना अनुभव होता है, कर्म चाहिए, क्रम
कर्म चाहिए, ऐसे मुझे भी लगा ना। क्या कहते हैं, कर्मों का उदय या उदीर्णा जिस कर्म का जितना अनुभाग होता है तदनुरूप ही होता है। इसीलिए तत्वार सूत्र में गृद्धपिश आचार्य ने अनुभाग की व्याख्या करते हुए कहा है, विपाको अनुभव, उसको अनुभव कहा अनुभाग के लिए। विपाको यानी कर्म का विपाक होना, फल मिलना, यह अनुभाग बंध की अपेक्षा, यह अनुभाग बंध की अपेक्षा दो प्रकार का है, मूल प्रकृति अनुभाग बंध और उत्तर प्रकृति अनुभाग बंध। मूल प्रकृति केवल आठ प्रकृतियों की बात करेंगे और उत्तर प्रकृति के प्रकरण में हर एक को अलग अलग विस्तार से देखेंगे। मूल प्रकृतियां आठ है, बंध के समय इन्हें जो अनुभाग प्राप्त होता है उसे मूल प्रकृति अनुभाग बंध कहते हैं। बंध के समय में जिस मात्रा में अनुभाग का बंध हुआ है उसको कहेंगे मूल प्रकृति अनुभाग बंध। और बंध के समय उत्तर प्रकृतियों को जो अनुभाग प्राप्त होता है उसे उत्तर प्रकृति अनुभाग बंध कहते हैं। तृतीय अनुभाग बंधाधिकार, क्योंकि ये बंध अधिकार का तीसरा है वेद। पहले प्रकृति बंधाधिकार देखा, स्थिति बंधाधिकार की दो पुस्तकें देखी, दूसरी और तीसरी, ये पुस्तक तो चौथी है पर बंध का अधिकार तीसरा है जिसका नाम है अनुभाग बंधाधिकार। इसमें इसी अनुभाग का विविध अधिकारों द्वारा विचार किया गया है, उसके अलग अलग चैप्टर्स बने हैं उसके विषय के अनुसार। वहां मूल प्रकृति अनुभाग बंध का विचार करते समय पहले दो अधिकारों द्वारा उसका विचार किया गया है। वे दो अधिकार ये है, निषेक प्ररूपणा और स्पर्धक प्ररूपणा। उनका खुलासा इस प्रकार है, निषेक प्ररूपणा, ये हमने देखा ना, जो स्थिति को बताने वाली वो निषेक प्ररूपणा होती है और अनुभाग को बताने वाली वो स्पर्धक प्ररूपणा होती है। तो निषेक प्ररूपणा, प्रति समय जो विवक्षित मूल या उत्तर कर्म बनता है उसका दो प्रकार से विभाग होता है, एक तो स्थिति की अपेक्षा और दूसरा अनुभाग की अपेक्षा। आबाधा काल को छोड़कर स्थिति समय से लेकर प्रत्येक समय में जो कर्म पुंज प्राप्त होता है उसे स्थिति की अपेक्षा निषेक कहते हैं। यानी जितनी स्थिति बांधी है ना, तो उसमें बंध के समय से लेकर कितनी टॉपमोस्ट निषेक कौन से समय पर है उसको कहेंगे इतनी स्थिति बांधी। ज्ञानावरण की 30 कोड़ा कोड़ी स्थिति हम समझते हैं, उत्कृष्ट स्थिति कोई बांधता है, परंतु उसकी आबादा को छोड़ 3000 वर्ष का, तो स्थिति वहां से शुरू होती है 3000 वर्ष, और एक समय, दो समय, तीन समय, इस तरह से। तो प्रत्येक समय में जो कर्म पुंज प्राप्त है, यानी एक एक निषेक में अनंत कर्म परमाणु है, उसको कर्म पुंज कहा, उसे स्थिति की अपेक्षा निषेक कहते हैं। नीचे का उसको कहेंगे पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से। इस प्रकार प्रत्येक समय में बंधने वाला कर्म है। एक समय बंधने वाले वो निषेक रचना होती है, दूसरे समय में बंधा वो भी उसकी अपनी उस समय की निषेक रचना। तो प्रत्येक समय में बंधने वाला कर्म अपनी स्थिति के अनुसार प्रत्येक समय में विभाजित हो जाता है। एक समय में अनंत कर्म परमाणु बंधे और उसमें पहला निषेक दूसरा निषेक स्थिति के अनुसार वो विभाजन हो जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। मात्र आबादा के जितने समय होते हैं उनमें निषेक रचना नहीं होती। क्या कहा? आबादा के जितने समय है उनमें निषेक रचना नहीं होती। पहले मैंने एक बार बताया था, किसी के फोन आया था, किसी विद्वान का वहां चर्चा चली थी, लेकिन आबादा के काल के बाद निषेक रचना होती है नहीं। 3000 वर्ष के आबादा मान लेते तो उतना काल जाने के बाद फिर निषेक रचना होती, तब तक निषेक रचना नहीं होती, ऐसा उनका कहना था। मैंने ऐसा नहीं है, निषेक रचना तो बंध के समय ही होती है, परंतु आबादा काल के जितने समय है उसमें निषेक नहीं बनते हैं, उसके ऊपर निषेक बनते हैं। यहां तो कितना स्पष्ट लिखा, आबादा के जितने समय होते हैं उनमें निषेक रचना नहीं होती। हाँ, वहां पर भी पूर्व में बंधे हुए वो पड़े हैं उस काल में उदय आने योग्य, उसकी चर्चा नहीं, एक समय में बंधे हुए की बात है यहाँ पर। यह तो स्थिति के अनुसार कर्म विभाजन का क्रम है। अनुभाग की अपेक्षा जघन्य अनुभाग वाले कर्म परमाणुओं की प्रथम वर्गणा होती है। अभी अनुभाग की अपेक्षा जो हम कहेंगे तो वर्गणाओं की बात करेंगे। एक वर्गणा में हम कहेंगे इतने नंबर ऑफ परमाणु है। निषेक में क्या देखा था? वो कर्म पुंज था, उनकी स्थिति समान थी एक एक निषेक में। यहाँ एक एक वर्गणा में क्या है? उनका अनुभाग समान है। तो जघन्य अनुभाग जिनमें जिनमें है उनको कहेंगे प्रथम वर्गणा, और प्रत्येक परमाणु को वर्ग कहते हैं। क्रम वृद्धि रूप अनुभाग शक्ति को लिए हुए और अंतर रहित, क्या कहते हैं? क्रम वृद्धि ने क्रम से वृद्धि, एक एक अविभाग प्रतिच्छेद की वृद्धि होगी, ऊपर की वर्गणा, दूसरी वर्गणा, तीसरी में और एक अविभाग, चौथी में, ये क्रम से वृद्धि हो रही है। और निर अंतर, अंतर छूटे बिना, तो क्रम वृद्धि रूप अनुभाग शक्ति को लिए हुए क्या वृद्धि हो रही है अनुभाग की, और कैसे है अंतर रहित, ये वर्गणाएं जहां तक पाई जाती है उसकी स्पर्धक संज्ञा है। ये तो एक स्पर्धक हुआ, जैसे हमने बहुत बार में उदाहरण दिए थे, 100 से लेकर मान लेते 120 तक है, 100, 101, 102, 120, इस तरह से उतनी वर्गणा क्रम सहित है अनुभाग बढ़ते हुए, और उसमें कोई अंतर नहीं है, क्रम से एक एक बढ़ता है, फिर ऊपर अंतर पड़ जाता है और डायरेक्ट 200 नंबर वाले अनुभाग वाले वर्गणा शुरू होती है। तो 120 से लेकर 200 तक बीच में कुछ नहीं है वर्गणा। अब वर्गणा कहाँ, कौन से अनुभाग वाली होगी? 200 वाली, वहां अंतर पड़ा, तो वहां वो अंतर है ना, तो पहले स्पर्धक का कहेंगे, फिर 200 नंबर से दूसरा स्पर्धक शुरू हो जाएगा। अनुभाग की अपेक्षा वर्गणाओं में अंतर पड़ता है, परंतु उन्हीं वर्गणाओं में परमाणुओं की संख्या अगर लेते हैं तो सभी वर्गणाएं, वो अंतर वाली भी, बिल्कुल एक एक छेद घटते हुए परमाणु की संख्या होगी उसमें। फिर से वर्गणाओं की अपेक्षा हम वर्णन करते हैं ना, पहले तो हमने निषेक रचना बता दी, वो तो बात समझ में आ गई, अब अनुभाग की अपेक्षा बात करेंगे। तो अनुभाग की अपेक्षा बात करनी है तो हम अभी वो निषेक को भूल जाओ, ये पहली वर्गणा है, इसमें मिनिमम अनुभाग वाले परमाणु हमने 100 माने थे। दूसरी वर्गणा में कितने हैं? 101 है, 102 है, ऐसे 121 तक है। फिर अनुभाग की अपेक्षा अंतर पड़ता है, यहाँ 120 वाला था, इसके ऊपर की वर्गणा में 200 हो जाएगा,
बीच में गैप आ जाएगा,
अनुभाग की अपेक्षा गैप, परंतु परमाणु की अपेक्षा ये 200 वाला भी हम यहाँ लिखेंगे, 201, 202 अनुभाग बढ़ रहा है और परमाणु की संख्या घट रही है, जैसे निषेकों में होती है, नीचे का निषेक ज्यादा परमाणुओं का, ऊपर परमाणु कम और स्थिति ज्यादा है,
अणुभट बढ़ता है और परमाणु कम।
हाँ, स्थिति की निषेक रचना में क्या देखा था, ये नीचे का निषेक, ये दूसरा निषेक, ये तीसरा, ये स्थिति बताने वाला। ऊपर एक एक समय की स्थिति बढ़ रही है और परमाणु की संख्या घट रही है। वर्गणाओं में नीचे अनुभाग कम है, ऊपर एक एक से वृद्धि हो रही है। बीच में गैप है 120 से लेकर एकदम 200 का वर्गण आ गई। यहाँ पर अनुभाग की अपेक्षा गैप है तो वो एक स्पर्धक और दूसरा स्पर्धक कहलाए, परंतु वर्गणा की अपेक्षा अगर परमाणु की अपेक्षा उनको हम एक लाइन में रखेंगे इसे निषेक जैसा, तो उनमें परमाणु एक एक चय से घटते हुए हो गए। ख्याल में आती बात है, ये अनुभाग की अपेक्षा बात चल रही है। ये क्रम वृद्धि रूप अनुभाग शक्ति को लिए हुए अंतर रहित ये वर्गणाएं जहां तक पाई जाती है, जैसे हमारे उदाहरण में 100 से लेकर 120 तक उसकी स्पर्धक संज्ञा है, उसको एक स्पर्धक कहा। ये स्पर्धक देशघाती और सर्वघाती दो प्रकार के होते हैं। स्पर्धक क्या बताते हैं, अनुभाग बताते हैं। देशघाती का अर्थ क्या है, उसका उदय होवे और प्रतिपक्ष का पूरा घात नहीं करे, देशघात करे। सर्वघात है प्रतिपक्ष का पूरा घात। ये दोनों प्रकार के स्पर्धक स्थितिबंध के अनुसार जो निषेक रचना कही है उसके प्रत्येक निषेक से लेकर कितने स्पष्ट लिखा है अंत तक पाए जाते हैं। यानी जो हमने निषेक रचना देखी, अब एक निषेक में अनंत परमाणु तो स्थिति की अपेक्षा देखे थे, अब ये निषेक को थोड़ा ऐसा आड़ा रखते हैं, तो एक एक निषेक में यानी प्रत्येक निषेक में ये जगन्य स्पर्धक से लेकर उत्कृष्ट स्पर्धक के लिए अनुभाग की अपेक्षा अनंत भेद होते हैं। वहां एक एक निषेक में अनंत स्पर्धक पाए जाते हैं, एक एक स्पर्धक में अनंत वर्गणा होती है और एक एक वर्गणा में अनंत परमाणु होते हैं। फिर से निषेक तो स्थिति को बताने वाले हैं और वर्गणा अनुभाग को बताने वाले हैं। हमने वर्गणा क्या है, स्पर्धक क्या है, उसको देख लिया। अब यहाँ क्या कथन हो रहा है, स्थिति की अपेक्षा जो हमने निषेक देखे, पहले निषेक से लेकर अंत निषेक तक असंख्यात निषेक पड़े हैं, प्रत्येक निषेक में अनुभाग के सभी स्पर्धक पड़े। इन्हें पहले निषेक से लेकर अंत के निषेक तक जगन्य अनुभाग वाले भी परमाणु है, एक अनुभाग ज्यादा वाले यानी वर्गणा सभी है उसमें, जगन्य वर्गणा से लेकर उत्कृष्ट वर्गणा तक स्पर्धक भी जितने हैं उसके, जगन्य से लेकर उत्कृष्ट सभी स्पर्धक पड़े। हम पहले ऐसा समझते थे, सुनते भी थे कि नीचे नीचे मंद अनुभाग है और ऊपर बहुत तीव्र अनुभाग है, ऐसा नहीं है। जो स्थिति की अपेक्षा वो अलग विचार करो, अनुभाग की अपेक्षा अलग विचार करो। तात्पर्य है प्रत्येक स्थिति निषेक में मिला देशघाती स्पर्धक है और सर्वघाती स्पर्धक, मात्र देशघाती स्पर्धक आठों कर्मों के होते हैं और सर्वघाती स्पर्धक केवल चार घाती कर्मों के होते हैं। अच्छा, अघाती को उन्होंने देशघाती में ले लिया, अब स्पर्धक प्ररूपणा, ये स्पर्धकों का यहां वर्णन करेंगे। वैसे तो निषेक प्ररूपणा में उन्होंने ये भी बता दिया कि प्रत्येक निषेक में सभी स्पर्धक है और सभी टाइप के परमाणु भी है, सर्वघाती देशघाती। अब स्पर्धक प्ररूपणा करेंगे, अविभाग प्रतिच्छेद का हम विचार आगे करेंगे। अविभाग प्रतिच्छेद का क्या है अर्थ, उसका शक्ति का यूनिट है, कर्म की शक्ति नापने का यूनिट है, एकक है उसका। अविभाग जिसका दूसरा विभाग नहीं होता, ऐसे शक्ति के सबसे छोटे अंश को क्या कहा, अविभाग, जिसका दूसरा विभाग नहीं होता, ऐसे शक्ति के सबसे छोटे अंश को जिसको हम यूनिट कहेंगे, ऐसे अनंतानंत अविभाग प्रतिच्छेद एक वर्ग में पाए जाते हैं। वर्ग किसको कहा था नितिन भाई? परमाणु को, एक परमाणु को यहाँ एक वर्ग कहा। और हरेक वर्ग में क्या है? अनंत अनंतानंत अविभाग प्रतिच्छेद, यानी जिसमें मिनिमम हमने 100 मान लिया था वो भी कितना है, तो अनंतानंत अविभाग प्रतिच्छेद है उसके, तथा उन वर्गों से मिलकर एक वर्गणा बनती है, यानी जिनमें जिनमें समान अनुभाग है ऐसे वर्ग यानी परमाणुओं के समूह को हम वर्गणा नाम देंगे। ऐसे नहीं कि समान अनुभाग वाले चिपके हुए रहे, ऐसा नहीं है, ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो कहीं भी हो उसको हम एक वर्गणा के रूप में बताएंगे। और ऐसी अनंतानंत वर्गणाएं मिलकर एक स्पर्धक होता है। विशेषता इतनी है कि प्रथम वर्गणा के प्रत्येक वर्ग में समान अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, दूसरी वर्गणा के प्रत्येक वर्ग में एक से अधिक अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, यानी अविभाग प्रतिच्छेद एक से बढ़े हुए हैं। इसी प्रकार प्रत्येक स्पर्धक की अंतिम वर्गणा तक जानना, जैसे हमने 100 से 120 माना, प्रत्येक की अपनी अपनी अंतिम वर्गणा तक, बीच में अंतर है, फिर दूसरा स्पर्धक शुरू होता है। वर्गणाओं में जहां अनुभाग की अपेक्षा अंतर है उसके पश्चात दूसरा स्पर्धक चालू हो जाता है, फिर निरंतर वर्गणा होगी अनुभाग की अपेक्षा एक एक से बढ़ती हुई, फिर गैप होगी, फिर तीसरा स्पर्धक होगा। परंतु परमाणु की अपेक्षा से घटती हुई संख्या, उसमें वो अनुभाग का जो बीच में अंतर है उसको कंसीडर नहीं करना। अभी आगे ये दो अनुयोग द्वार आगे की प्ररूपणा के मूल आधार है, तदनुसार अनुभाग बंध का विचार संज्ञा आदि 24 अधिकारों द्वारा किया गया है। खुलासा इस प्रकार है, संज्ञा के दो भेद हैं, घाती संज्ञा और स्थान संज्ञा। ये विषय अपना हो चुका है पहले ही, जैसे हम कहते ना घाती यानी क्या, सर्वघाती देशघाती कहेंगे, और स्थान में क्या कहेंगे, एक स्थानिक द्विस्थानिक त्रिस्थानिक चतुस्थानिक, उसको स्थान कहेंगे। अब यहाँ क्या लिखा देखिए, जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म बतलाए गए हैं वे घाती और अघाती इन दो भागों में विभाजित किए हैं। घाती कर्म भी दो प्रकार के हैं, देशघाती और सर्वघाती। जो जीव के ज्ञानादि गुणों का पूरी तरह से घात करते हैं उन्हें सर्वघाती कर्म कहते हैं, और जो एक देश घात करते हैं उन्हें देशघाती कर्म कहते हैं। अघाती कर्म जीव के अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते इसलिए उन्हें अघाती कहते हैं। अनुजीव जैसे ज्ञान है, दर्शन है, जीव के वीर्य है, वो क्या है, अनुजीवी गुण। अनुजीवी यानी वो तो जिसको स्टेटमेंट उसका पॉजिटिव होता है कथन में, जैसे ज्ञान दर्शन जो हम कहते ना ये जीव के गुण है, और जीव में अस्पर्श नाम का गुण है। अस्पर्श वो है जीव का गुण, परंतु स्पर्श का नहीं होना ये जीव का गुण है। परंतु स्पर्श गुण किसका है, तो पुद्गल का है, वो उसका अनुजीवी है। परंतु जीव में कथन करते समय उसका वो निगेटिव रूप से कथन किया ना, स्पर्श का नहीं होना ऐसा अस्पर्श नाम का जीव का गुण है, अस्पर्श नाम दे दिया उसको, तो उसको क्या कहेंगे, वो प्रतिजीवी गुण। घाती कर्मों का जो सर्वघाती और देशघाती अनुभाग है वह उत्कृष्ट आदि भेदों में, उत्कृष्ट आदि नहीं, उत्कृष्ट है, अनुत्कृष्ट है, अजघन्य है, जघन्य है, अनुभाग की अपेक्षा उसमें भेद होंगे, विभाजित होकर भी उत्कृष्ट अनुभाग बंध सर्वघाती ही होता है। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध सर्वघाती और देशघाती दोनों प्रकार का होता है। इसी प्रकार जघन्य अनुभाग बंध देशघाती ही होता है और अजघन्य अनुभाग बंध सर्वघाती और देशघाती दोनों प्रकार का होता है। ये और खुलासा आएगा तभी ये बात ख्याल में आएगी आपको। इस प्रकार घाती संज्ञा प्ररूपणा द्वारा इन सब बातों की जानकारी मिलती है। स्थान संज्ञा यानी स्थान की अपेक्षा उसको कथन करना, उसको नाम देना। स्थान संज्ञा प्ररूपणा द्वारा कौन मनुष्य अनुभाग चतुस्थानिक है आदि बातों का ज्ञान होता है। मनुष्य शब्द क्यों डाला? ये कौन सा अनुभव चतुस्थानिक है, कौन सा? इस तरह से चारों घाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध चतुस्थानिक, त्रिस्थानिक, द्विस्थानिक और एक स्थानिक होता है। ये तो जब हम विस्तार से कहेंगे ना तभी ख्याल में आएगा। अनुभाग की अपेक्षा बंध, अभी हमने ये तो स्थिति की अपेक्षा बताई। उत्कृष्ट स्थिति यानी मैक्सिमम स्थिति बांधने वाला, जब अनुभाग की अपेक्षा ये पहला स्पर्धक, ये हम स्पर्धक बताएंगे इसमें अनंत वर्गना, दूसरा तीसरा चौथा ये उत्कृष्ट अनुभाग बंध है। तो जो उत्कृष्ट अनुभाग बंध कर रहा है किसमें? घाती कर्मों में। तो उत्कृष्ट अनुभाग तो चतुस्थानिक वाला उत्कृष्ट अनुभाग, चतुस्थानिक कौन से? लता है, दारू है, अस्थि और शैल। तो वो शैल वाला उसका उत्कृष्ट होगा, वो चतुस्थानिक उत्कृष्ट होगा। त्रिस्थानिक उत्कृष्ट में भी वो अस्थि वाला उत्कृष्ट होगा। इस तरह से जघन्य अनुभाग बंध एक स्थानिक होता है और अजघन्य अनुभाग बंध एक स्थानिक, द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुस्थानिक है। देखो जो उत्कृष्ट नहीं वो सारा अनुत्कृष्ट कहलाएगा, जो जघन्य नहीं वो सारा अजघन्य कहलाएगा। उत्कृष्ट तो चतुस्थानिक ही होगा, है ना? चार अघाती कर्मों में उत्कृष्ट अनुभाग बंध चतुस्थानिक होता है। अघाती कर्मों के नाम क्या है स्पर्धकों के? अश्विन भाई, हाँ हाँ बोलो। नीम, कांजीर, विष और हलाल। तो हलाल उत्कृष्ट अनुभाग है और वो चतुस्थानिक है। तो अनुत्कृष्ट अनुभाग ये ऊपर भी कुछ रह गया है, यहाँ लिखा है ना चार घातों कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध चतुस्थानिक है और अनुत्कृष्ट त्रिस्थानिक, द्विस्थानिक, एक स्थानिक होता है, ऐसा लिखना चाहिए। हाँ अरविंद, देखो जैसे हमने जघन्य के लिए कहा जघन्य एक स्थानिक होता है और अजघन्य एक स्थानिक, द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक, चतुस्थानिक होता है। तो उत्कृष्ट अनुभाग बंध चतुस्थानिक होता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध चतुस्थानिक भी है, त्रिस्थानिक भी है, द्विस्थानिक भी है, एक स्थानिक है। यहाँ जरा जोड़ लो पेंसिल से। देखो जहां लिखा है ना चारों घाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध, यहां से ऊपर ले लो, पेज में ऊपर लिख दो। ये चतुस्थानिक उधर भी रखो, उसके पहले आपको जोड़ देना है। क्या कहा? यहां लिखा है चारों घाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध, इससे आगे ऐड करना है। चतुस्थानिक होता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध, और डालो या फुल स्टॉप करके आगे लिखना? और लिखना अच्छा है। और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध आगे तो है वहां लिखा हुआ अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध आगे की बात तो लिखी है चतुर्स्थानिक त्रिस्थानिक द्विस्थानिक और एकस्थानिक होता है ये जोड़ने से वो बात सही घटित होती है ख्याल में आया क्या किया उत्कृष्ट कैसा है चतुर्स्थानिक है और अनुत्कृष्ट कैसा है क्योंकि चतुर्स्थानिक भी में भी अनंत स्पर्धक है उसका टॉप मोस्ट छोड़ दो तो बाकी अनुत्कृष्ट चतुर्स्थानिक है त्रिस्थानिक अनुत्कृष्ट कहलाएगा द्विस्थानिक भी उत्कृष्ट की अपेक्षा अनुत्कृष्ट ही है जघन्य भी है वो भी उत्कृष्ट की अपेक्षा अनुत्कृष्ट है यानी एट ए टाइम दो में ही विभाग उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट फिर हम जघन्य करेंगे तो जघन्य और अजघन्य तो जघन्य तो वो एक स्थानीय होता अजघन्य में किस किस को लेंगे एक स्थानिक भी कुछ सब होगी ये हो गए जघन्य और उत्कृष्ट दोनों की बात हो गई अब चार अघाती कर्मों में उत्कृष्ट अनुभाग चतुस्थानिक होता है अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध चतुस्थानिक त्रिस्थानिक और द्विस्थानिक होता है देखो एक स्थानिक नहीं कहा ये विशेषता है अघाती में घाती में एक स्थानिक भी होता है श्रेणी में वगैरह एक स्थानिक बंध भी होता है चार अघाती में क्या क्या लिखा उत्कृष्ट तो चतुस्थानिक है वहां भी देखा था अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध चतुस्थानिक है त्रिस्थानिक है और द्विस्थानिक होता है एक स्थानिक नहीं है नहीं है देखो जघन्य भी द्विस्थानिक है एक स्थानिक नहीं कहा ऐसा है उसका स्वरूप अघाती का अघाती में है घाती का तो श्रेणी में क्योंकि वो अति प्रशस्त है उसका तो एक स्थानिक हो जाता है हमने देखा ना वो तो द्विस्थानिक अनुभाग बंध था फिर उसके ऊपर जाके एक स्थानिक हो जाता है मोनी का तो अघाती में फिर पड़तियों में अघाती में उत्कृष्ट तो चतुस्थानिक है और अनुत्कृष्ट चतुस्थानिक त्रिस्थानिक और द्विस्थानिक होता है जघन्य अनुभाग बंध द्विस्थानिक है एक स्थानिक नहीं कहा यहाँ पर भी जघन्य में बंद की बात है बंद की बात है वो प्रशस्त प्रकृति है कैसे बंधेगी चतुस्थानिक बंधेगी घाती में भी दो है प्रशस्त और अप्रशस्त प्रशस्त तो बढ़ते हुए होगा अप्रशस्त कहाँ तक बंधेगी श्रेणी में कौन सी अघाती की अप्रशस्त बंध रही है कहाँ तक बंधेगी अरे हम श्रेणी की बात पूछ रहे दूसरे में तो चतुस्थानिक अप्रशस्त बंधेगी त्रिस्थानिक बंधेगी हमने वहाँ कहाँ मना किया अप्रशस्त बंद नहीं है वो एक स्थानीय बंद नहीं है असतावेदनी तो वहां तो एक स्थानीय की बात नहीं है बंद की कल हमने आपको याद होगा समुदाहर में सात बंधक और असात बंधक देखे थे उसमें जो प्ररूपणा चली थी वो द्वितीय और चतुर्थ को लिया था वहां भी एक स्थानीय की बात नहीं की थी ख्याल में यही बात तो ख्याल में यही ना बात कल दूसरी पुस्तक में से जो पढ़कर बताया था ना वही बात देखो ये पूरा विषय आने वाला है तो केवल उसकी इंट्रोडक्शन है यहाँ पर इसको इन डिटेल देखेंगे हम अजघन्य अनुभाग द्विस्थानिक त्रिस्थानिक और चतुस्थानिक है क्योंकि जघन्य ही जहां द्विस्थानिक बताया अजघन्य उसके ऊपर के है यहां घाती कर्मों में देखो अभी नाम लेकर बताया लता दारू अस्य और शैल रूप से चार प्रकार का अनुभव माना गया है, जिसमें यह चारों प्रकार का अनुभव होता है उसे चतुस्थानिक अनुभव कहते हैं, जिसमें शैल के बिना तीन प्रकार का अनुभव होता है उसे त्रिस्थानिक अनुभव कहते हैं, जिसमें अस्थि और शैल के बिना दो प्रकार का अनुभव होता है उसे द्विस्थानिक अनुभव कहते हैं, तथा जिसमें केवल लता रूप अनुभव होता है उसे एक स्थानिक अनुभव कहते हैं। अघातिकर्म दो प्रकार के होते हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त, जिसको हम शुभ और अशुभ कहेंगे, शुभ प्रकृति, पुण्य प्रकृति, पाप प्रकृति। प्रशस्त कर्मों में गुड़, खांड, शर्करा और अमृतोपम यानी उपमा वाले इसके समान, तथा अप्रशस्त कर्मों में नीम, कांजीर, विष और हला हलोपम यानी हला हल की उपमा जिसको दिया अनुभाग माना गया है। यहाँ भी जहाँ यह चारों प्रकार का अनुभाग होता है उसे चतुस्थानिक अनुभाग कहते हैं, जहाँ अंत के भेद छोड़कर तीन प्रकार का अनुभाग होता है उसे त्रिस्थानिक अनुभाग कहते हैं, और जहाँ अंत के दो विकल्पों को छोड़कर शेष दो प्रकार का अनुभाग होता है उसे द्विस्थानिक अनुभाग कहते हैं। यहाँ एक स्थानिक को नहीं लिया है, प्रशस्त में भी नहीं लिया एक स्थानिक, क्योंकि जहाँ देखो विशुद्धि बढ़ती है वहाँ क्या होगा, प्रशस्त में चतुस्थानिक। आप कहेंगे विशुद्धि जगन्य हो रही ना, ये संकलेश बढ़ रहा है, तो द्विस्थानिक के बाद तो असाता का वहाँ बंद होने लगेगा, असाता बंधेगा साता के बाद, तो उसको एक स्थानिक वहाँ नहीं लिया, साता को भी नहीं लिया, असाता को भी नहीं लिया। सर्व नो सर्व बंध, अभी सर्व प्रकार के अनुभाग बंधना या कम बंधना उसको सर्व नो सर्व कहेंगे। देखो पढ़ेंगे, ज्ञानावरण आदि कर्मों का अनुभाग बंध होने पर वह सर्व बंध रूप है या नो सर्व बंध रूप है, इसका विचार इन दोनों अनुयोग द्वारों में किया गया है। कौन से प्रकृति में कैसा होगा क्या होगा वो वहां बताएंगे। जहाँ सब अनुभाग का बंध होता है उसे सर्व बंध कहते हैं, यानी जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक सभी अनुभाग स्पर्धक बंधेंगे उसको सर्व बंध कहेंगे, और जहाँ उससे न्यून अनुभाग का बंध होता है उसे नो सर्व बंध कहेंगे, यानी अनुत्कृष्ट बंध होता है उसको नो सर्व कहेंगे। वहां पर मात्र यह ओ और आदेश से दो प्रकार का है, इसलिए जहाँ जो संभव हो उसे घटित कर लेना चाहिए। जैसे हमने इन जनरल सब में जो उत्कृष्ट है उसको उत्कृष्ट कहेंगे, अब किसी विशिष्ट गति में जो उत्कृष्ट है उसको उसके लिए उत्कृष्ट कहेंगे। जैसे सर्वोत्कृष्ट अनुभाग का अभी घाती कर्मों की बात करेंगे, सर्वोत्तम तो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त को बंधेगा, और एक केंद्रीय के जो उत्कृष्ट है उसके लिए उत्कृष्ट है, वो का उत्कृष्ट एक केंद्रीय में नहीं होगा, उदय रूप की बात है, बंध रूप की बात है। यानी जिसको न्यून अनुभाग का बंध है उसको नो सर्व, मात्र यह ओवर आदेश वो हो गया, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट बंध। ज्ञानावरणिधि का अनुभव बंध होने पर वह उत्कृष्ट बंध है या अनुत्कृष्ट बंध है, इसका विचार इन दो अनुयोग द्वारों में किया जाता है। जहाँ ओग या आदेश से सर्वोत्कृष्ट अनुभाग प्राप्त होता है इसे उत्कृष्ट बंध कहते हैं, और जहाँ इससे न्यून अनुभाग बंध होता है उसे अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध कहते हैं। फिर वो कहेंगे ना किसके होता है, स्वामी कौन है, क्या है वगैरह वगैरह बात करेंगे। जघन्य अजघन्य बंध, जैसे उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट देखा वैसे जघन्य अजघन्य, इन दोनों अनुयोग द्वारों में जो अनुभाग बंध हुआ है वह जघन्य है कि अजघन्य है, इसका विचार किया जाता है। बंध के समय जो सबसे कम अनुभाग प्राप्त होता है, बंध के समय की बात है, उसे जघन्य अनुभाग बंध कहते हैं, और इस अधिक अनुभाग का बंध होने पर, इससे अधिक अनुभाग का बंध होने पर वह अजघन्य अनुभाग बंध कहलाता है। वह भी ओह और आदेश से दो प्रकार का होता है। यहाँ उत्कृष्ट आदि चार भेदों के यानी उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य, इनके संबंध में इतना विशेष जानना चाहिए कि उत्कृष्ट अनुभाग बंध में ओम और आदेश से सर्वोत्कृष्ट अनुभव का बंध लिया जाता है और अनुत्कृष्ट अनुभव बंध में ओम और आदेश से उत्कृष्ट से सिवा यानी उत्कृष्ट को छोड़कर शेष जघन्य आदि सब अनुभाग बंध लिया जाता है। ये तो अभी तक हमने सब जगह उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य इसी तरह से देखा था। इसी प्रकार जघन्य अनुभाग बंध में ओग व आदेश से सबसे कम अनुभाग बंध विवक्षित है और अजघन्य अनुभाग बंध में ओग और आदेश से जघन्य के सिवा उत्कृष्ट का सब अनुभाग बंध लिया जाता है। इन्होंने पूरा ही उसमें ले लिया, पढ़ लेते हैं। वैसे मूल में यही बात पूरे आने वाली है, ऐसे आसान है सब। यह पहले शादी अनादि ध्रुव वगैरह सब लिए थे। अब हम मूल पुस्तक की बात चालू करते हैं। पेज नंबर एक जहाँ शुरू होता है, मंगलाचरण तो अभी हमने देखा था। तदीयो अनुभाग बंधा ही आरोप इन्हें तृतीय अनुभाग बंध यहाँ से शुरू हो जाता है। ऊपर नमोकार मंत्र लिखा ही था शुरू में, उसी का नीचे अंत किया है। सब अरहंतों को नमस्कार हो, सब सिद्धों को नमस्कार हो, सब आचार्यों को नमस्कार हो, सब उपाध्यायों को नमस्कार हो और लोक में सब साधुओं को नमस्कार हो। आगे अनुभाग बंध का विचार करते हैं। वह दो प्रकार का है, मूल प्रकृति अनुभाग बंध और उत्तर प्रकृति अनुभाग बंध। मूल प्रकृति अनुभाग बंध, आगे मूल प्रकृति अनुभाग बंध का सर्वप्रथम विचार करते हैं। उसके दो नियोग द्वार ज्ञातव्य है, यथा निषेक प्ररूपणा और स्पर्धक प्ररूपणा। अभी जो हम पढ़ के आए ना वही बात है, दोबारा पढ़ लेते हैं। विशेषार्थ, आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त होने वाले कर्मों में राग द्वेष और मोह के निमित्त से जो फलदान शक्ति प्राप्त होती है उसे अनुभाग कहते हैं, क्योंकि कषाय के निमित्त से ना, तो उसमें वो सब मिथ्या तो राग द्वेष सब ले लेना। कर्म बंध के समय जिस कर्म की जितनी फलदान शक्ति प्राप्त होती है उसका नाम अनुभाग बंध है। वह ज्ञानावरण आदि मूल प्रकृति और मति ज्ञानावरण आदि उत्तर प्रकृतियों के भेद से दो प्रकार की है। इस अनुयोग द्वार में इन्हीं दो प्रकार के अनुभाग बंधों का विविध मुख्य और अवांतर प्रकरणों द्वारा, यानी मुख्य प्रकरण और उसके और भेद वाले अवांतर प्रकरणों द्वारा विस्तार के साथ विचार किया गया है। सर्वप्रथम मूल प्रकृति अनुभाग बंध का विचार किया गया है और तदनंतर उत्तर प्रकृति अनुभाग बंध का। मूल प्रकृति अनुभाग बंध का विचार सर्वप्रथम दो अनुयोगों के द्वारा करके अनंतर उस पर से फलित होने वाले अनेक अनुयोगों के द्वारा विचार किया गया है। मुख्य अनुयोग द्वार ये है निषेक प्ररूपणा और स्पर्धक प्ररूपणा। अनुभाग के मुख्यता से निषेक दो प्रकार के होते हैं, सर्वघाती और देशघाती। यद्यपि सर्वघाती और देशघाती यह भेद घाती कर्मों में ही संभव है, फिर भी अघाती कर्मों का अनुभाग घाती प्रतिबद्ध मानकर, क्योंकि अघाती कर्मों में जो अनुभाग है वो घाती कर्म के निमित्त से हुआ ना, क्योंकि घाती कर्म के निमित्त से मोह राग द्वेष हो गए और उसके निमित्त से अघाती कर्मों में अनुभाग पड़ा, तो घाती निमित्तक होने से घाती प्रतिबिद्ध मानकर यहाँ ये दो भेद किए गए हैं, क्योंकि अघाती कर्म भी जीव के ऊर्ध्वगमनत्व आदि प्रतिजीवी गुणों का घात करने वाले होने से ये स्पष्ट रूप से लिया वे घाती प्रतिबद्ध ही है। यानी वो प्रतिजीवी गुणों का तो घात कर ही रहे, अघाती कर्म भी प्रतिजीवी गुणों का घात, जैसे अवगाहनत्व सूक्ष्म अव्यवाधत्व है, ये ऊर्ध्वगमन का भी घात कर रहे हैं देखो स्पष्ट रूप से लिखा है, अघाती कर्म जीव के ऊर्ध्व गमनत्व आदि प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं। ये देखो देखो, ये ऊर्ध्व गमन तो समझ में आता है, अव्यवाद को छोड़ दो। ऊर्ध्व गमन क्या है? सीधा ऊपर जाना। जब कब होता है?
ऊपर
सिद्ध भगवान होता है तब। उसके पहले ऊर्ध्व गमन प्रकट नहीं हुआ है, यानी विग्रह गति में ऊर्ध्व समान से ऊपर जाता है, ये कथन गलत है। उसके लिए ये रेफरेंस मिला आपने, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ। अव्यवाद जो मैंने कहा ना, एक तो अगुरु लघु अव्यवाद सूक्ष्मत्व, ये भी प्रतिजीवी गुण है। वो अव्यवाद क्या है? तो वेदनीय का कार्य क्या है? साता असाता दो प्रकार के हैं, तो उसमें बाधा उत्पन्न होती है। और अरिहंत भगवान का तो सुख कैसा है? अभी उसमें वेदनीय है, पर है तो अनंत सुखी। परंतु सिद्धों का सुख कैसे? वेदनीय भी नष्ट हुआ, क्योंकि अव्यवाद अनंत सुखी। क्योंकि वो जो कोई कर्म कुछ नहीं कर रहा था, फिर भी वहां विद्यमानता थी, इसलिए उसकी अपेक्षा कहेंगे वो अव्यवाधत्व गुण प्रकट नहीं हुआ है, प्रतिजीवी गुण प्रकट। तो यहां लिखते हैं, अघाती कर्म जीव के प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं, और उसके लिए ऊर्ध्व गमन स्वभाव आदि प्रतिजीवी गुण लियो। ऊर्ध्व गमनत्व आदि, यानी स्पष्ट रूप से लिख दिया ना उन्होंने। प्रतिजीवी गुणों का घात करने वाले इसलिए घाती प्रतिबद्ध का, उनके एक नया नाम है घाती प्रतिबद्ध। ये तो हम पहले हमेशा कहते हैं आठों ही कर्मों का घात नाश हुए बिना ऊर्ध्व गमन स्वभाव प्रकट ही नहीं होता। ये तो बहुत बार, हर बार हम उसी आधार से निषेध करते हैं।
जब ऑक्सीजन लिया गया उसके बाद पहली बार दोबारा पड़ेंगे तो वो भी मिलेगा।
अब अघाती कर्मों को अघाती संज्ञा देने के कारण केवल इतना ही है, वे जीव के अनुजीवी गुणों का अंशतः भी घात करने में समर्थ नहीं है। कौन से है? अभिज्ञान है, वीर्य है, दर्शन है, सुख है, ये जीव के अनुजीवी गुण है, तो उसका घात करने में जरा भी समर्थ नहीं है। इस प्रकार कर्मों के देशघाती और सर्वघाती निषेकों का जिसमें विचार किया जाता है वह निषेक प्ररूपणा है, तथा जिसमें अनुभाग की मुख्यता से कर्मों के स्पर्धकों का विचार किया जाता है वह स्पर्धक प्ररूपणा है। इस प्रकार मूल प्रकृति अनुभाग बंध का विचार सर्वप्रथम इन दो अनुयोग द्वारों के द्वारा किया गया है। पहले में पहले निषेक प्ररूपणा, क्या कहते हैं यहाँ पर? अब सर्वप्रथम निषेक प्ररूपणा का विचार करते हैं। उसकी अपेक्षा आठों कर्मों के जो देशघाती स्पर्धक है, उनके प्रथम वर्गणा से लेकर निषेक है जो आगे बराबर चले गए हैं, तथा चार घाती कर्मों के जो सर्वघाती स्पर्धक है, उनके प्रथम वर्गणा से लेकर निषेक है जो आगे बराबर चले गए हैं। देखो इसका विशेष अर्थ। हाँ
हाँ
है नहीं ऐसा। घाती घाती बद्ध, ये घाती प्रतिबद्ध कहा है ना, प्रतिजीवी गुणों का घात, यानी जीव के प्रतिजीवी गुणों का घात होता है। जैसे हम जो चार आघाती कर्मों की बात की है, और सभी कर्मों की अपेक्षा क्या है, ऊर्ध्वगमन सोहन नहीं प्रकट होता, कोई भी बात यहाँ पर। घाती कर्म बराबर है, उसको देश हमने यहाँ से पढ़कर बताया, प्रतिजीविका का
ये बात मतलब नहीं रहेगा।
उन्होंने देशघाती आठों कर्मों में बताया, सर्वघाती चार बताया, तो अपेक्षा यहाँ अलग ली है। स्पर्धक प्ररूपणा भी चलेगी अपने, ये विशेषार्थ यहाँ फिर पढ़ लेते, निषेध प्ररूपणा का विशेषार्थ, क्योंकि ऊपर कुछ अटपटी बात है ना, वो समझ में नहीं आई, वही कहते वो आगे कहेंगे, विशेष स्पष्टीकरण आगे करेंगे कहते, वो ही समझ में नहीं है, इसलिए उन्होंने विशेषार्थ लिखा, विशेषार्थ पढ़कर फिर ऊपर चलेगी पढ़ने के लिए। इस प्रकरण में आठों कर्मों के यथासंभव सर्वघाती और देशघाती निषेक कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ समाप्त होते हैं, इस विषय का संकेत किया गया है। यानी देशघाती के उसकी अपनी पहली वर्गणा से लेकर आगे सब तक, और घाती कर्मों के जो सर्वघाती है, चार घाती कर्मों के, उनके पहले वर्गणा से लेकर आगे सब तक, यानी देशघाती भी और सर्वघाती भी सभी निषेकों में पाए जाएंगे, यही बात सिद्ध होती है ना। हमने क्या कहा, जो घाती कर्म है उसमें दो प्रकार के, देशघाती सर्वघाती, तो कौन से निषेकों में पड़े, तो पहले निषेक से लेकर सभी निषेकों में, बस इतना ही बताया। आघाती में भी उसके जो अपने हैं सभी टाइप के स्पर्धा, वो प्रत्येक निषेक में पाए जाए, आठों कर्मों की बात, आठों कर्मों के लिए देशघाती का और सर्वघाती के लिए चार घाती कर्म का। इस प्रकार निषेक प्ररूपणा अनियोग द्वार समाप्त हुआ। स्पर्धक प्ररूपणा, अब स्पर्धक प्ररूपणा का विचार करते हैं, उसकी अपेक्षा अनंतानंत अविभाग प्रतिच्छेदों के समुदाय समागम से एक वर्ग होता है, यानी उसका समूह होता है, यानी एक परमाणु में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं, अपनी भाषा में सीधा करके बताएंगे, अनंतानंत वर्गों के समुदाय समागम से एक वर्गणा होती है। देखो कितने परमाणु हैं, हम केवल निषेक रचना कहते तो इतने ख्याल में नहीं आते, तो एक एक निषेक में सभी स्पर्धक पाए जाते हैं, और एक एक वर्गणा में अनंत अनंत परमाणु लगते हैं। तो अनंतानंत वर्गों के समुदाय समागम से एक वर्गणा होती है, और अनंतानंत वर्गणाओं के समुदाय समागम से एक स्पर्धक होता है, जिसको हमने 100 से 120 कहे ना, वहां अनंतानंत है, इतनी वर्गणाओं का एक स्पर्धक हुआ, ऐसे स्पर्धक भी अनंत होते हैं। विशेषण प्रकृत में सबसे जघन्य अनुभाग शक्त्यंश है, वो सत्यंश हुआ, शक्ति अंश, शक्त्यंश तो रही है उसमें, को तो आधा आधा फिर शक्त्यंश, सबसे जघन्य अनुभाग शक्ति के अंश का नाम अविभाग प्रतिच्छेद। प्रत्येक कर्म परमाणु में ये अविभाग प्रतिच्छेद अनंतानंत उपलब्ध होते हैं, पाए जाते हैं, किंतु यहाँ ऐसे कर्म परमाणु विवक्षित है जिनमें समान अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। हम उन्हीं को कंसीडर करेंगे जिनका अनुभाग समान सिमिलर है सब में। ऐसे जितने कर्म परमाणु होते हैं उनमें से प्रत्येक की वर्ग और उनके समुदाय की वर्गणा संज्ञा है। ऐसे हर एक परमाणु को हम वर्ग कहेंगे, जिनमें समान समान है उनके समूह को वर्गणा है। अनुभाग की अपेक्षा एक एक वर्गणा में अनंतानंत वर्ग होते हैं। और अनंतानंत वर्गणाओं का एक स्पर्धक होता है, यानी एक स्पर्धक में कितने परमाणु होंगे, और ऐसे स्पर्धक कितने होते टोटल अनंत। पहली वर्गणा से दूसरी वर्गणा के प्रत्येक वर्ग में एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक होता है, दूसरी वर्गणा से तीसरी वर्गणा के प्रत्येक वर्ग में भी एक एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक होता है। इस प्रकार एक एक अविभाग प्रतिच्छेद की अधिकता स्पर्धक की अंतिम वर्गणा तक जाननी चाहिए, उसी स्पर्धक की अंतिम एक 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 से बढ़ते हुए, इसलिए उसको निरंतर कहा था, निरंतर बढ़ते हुए। इसके बाद दूसरे स्पर्धक की प्रथम वर्गणा के प्रत्येक वर्ग में अनंतानंत अविभाग प्रतिच्छेदों का अंतर देकर, यानी पहली स्पर्धक की अंतिम वर्गणा से कितना अनंतानंत अविभाग प्रतिच्छेदों का अंतर देकर नई वर्गणा होगी उसको दूसरी स्पर्धक कहेंगे। अविभाग प्रतिच्छेद उपलब्ध होते हैं शेष क्रम, यानी वहां से दूसरा स्पर्धक शुरू है ना, फिर उसमें भी एक एक से बढ़ते हुए वर्गणाएं होगी। शेष क्रम प्रथम स्पर्धक के समान जानना चाहिए, यही क्रम अंतिम स्पर्धक तक विवक्षित है। जैसे हमने 100 से 120 देखा, फिर 200 से दूसरा स्पर्धक 220 तक, फिर 300 से 320 तक, इस तरह से समझाने के लिए मैं बता रही हूं। अब इनमें 24 संयोग द्वार प्ररूपणा होगी। इस अर्थ पद के अनुसार यहाँ ये 24 संयोग द्वार ज्ञातव्य है, यानी 24 अलग अलग अपेक्षाओं से यहाँ इन सबका वर्णन करेंगे। यथा संज्ञा सर्वबंध नो सर्वबंध, उत्कृष्ट बंध अनुत्कृष्ट बंध, जघन्य बंध अजघन्य बंध, सादि बंध अनादि बंध, ध्रुव बंध और अध्रुव बंध से लेकर अल्प बहुत्व तक, यानी उसमें बीच में वो स्वामित्व होगा, काल होगा, अंतर होगा, जो सब कुछ बातें होगी। फिर उसके 24 के बाद भुजगार बंध, पहले समय में थोड़ा बांधा था वो फिर अनुभाग बंद बढ़कर बांधा, अभी अनुभाग की बात सोचना, वो स्थिति को अभी कपाट में बंद रखो, उसकी बात नहीं करना है। पद निक्षेप यानी उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि उसको पद निक्षेप कहेंगे। वृद्धि बंद यानी कौन से प्रकार की वृद्धि होती है, कितने हो गए, यानी 6 प्रकार की हो सकती है ना, कि अनंत वाली होगी। अनंत वाली होगी यहाँ तो मैक्सिमम वृद्धि बंध निकाल के देखो, इसमें होगा ना, आपके विषय परिचय में नहीं था क्या। छह वृद्धि हानि जहाँ अनंत है वहाँ 6 वृद्धि हानि होगी,
क्योंकि
6 वृद्धि हानि होगी। अध्यवसान समुदाय यानी जो कारणभूत परिणाम उसकी अपेक्षा, और जीव समुदाय यानी उसको बांधने वाले जीवों की संख्या, इस तरह इनका वर्णन आने वाला है। अब उसमें से पहली संज्ञा प्ररूपणा देखते हैं प्रथम। अब संज्ञा प्ररूपणा का प्रकरण है, उसमें भी संज्ञा 2 प्रकार की है, घाती संज्ञा और स्थान संज्ञा, यानी इसको देशघाती सर्वघाती ऐसा कहेंगे या चतुस्थानिक त्रिस्थानिक द्विस्थानिक वगैरह। घाती संज्ञा, चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध सर्वघाती होता है। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध सर्वघाती होता है और देशघाती होता है। जघन्य अनुभाग बंध देशघाती होता है तथा अजघन्य अनुभाग बंध देशघाती होता है सर्वघाती होता है। तथा शेष चार कर्मों का, चार घाती तो यहां हो गए, ये चार अघाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध घाती से संबंध रखने वाला अघाती होता है। घाती प्रतिबद्ध बताया था ना, घाती से संबंध रखने वाला अघाती। अभी उसी में वो स्थान की अपेक्षा कहेंगे स्थान संज्ञा। मेरा प्रश्न है मोहनीय का सर्वघाती तो उत्कृष्ट होगा और जघन्य देशघाती होगा कि नहीं होगा, यहाँ लिखा ना जघन्य अनुभाग बंध देशघाती होता है। यहाँ एक स्थानी की कहाँ बात है, देशघाती सर्वघाती की बात है। आप एक सैनिक का नाम क्यों ले रहे हैं, देशघाती की हम बात पूछ रहे हैं। मोनी इन जनरल कहेंगे तो होगा क्योंकि हम मूल प्रकृति की बात कर रहे हैं। जब मिथ्यात्व की बात पूछेंगे तो उसका तो एक स्थानी तो होगी नहीं, वो देशघाती तो है ही नहीं, वो सर्वघाती रूप से ही होगा। मिथ्यात्व प्रकृति का जघन्य बंध भी सर्वघाती रूप से ही है। मिथ्यात्व में कोई एक देशघाती तो होता नहीं। यहाँ क्या नाम लिया, मोहनीय लिया, क्योंकि हम केवल मूल प्रकृतियों की बात है। जिस किसी प्रकृति पर घटित होना है वो होने दो, हाँ होगा ना, वो देशघाती रूप से बंध होगा क्योंकि श्रेणी में चढ़ते हैं। पहले तो पहले सर्वघाती देशघाती होता था, अभी देशघाती होने लगेगा। संज्वलन का भी देशघातीकरण तो अन्य कर्मों में होगा, उत्तर प्रकृति में होगा, उसमें मिलेगा। यहाँ तो मोहनीय इन जनरल बात करें, जिस किसी उत्तर प्रकृति की अपेक्षा हो वो यहाँ लागू होगा। इसमें भी सर्वघाती स्पर्धक सत्ता की अपेक्षा है। देखो आगे पढ़ेंगे, स्थान संज्ञा, चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध चतुस्थानीय होता है घाती कर्मों में। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध चतुस्थानीय होता है, त्रिस्थानीय होता है, द्विस्थानीय होता है, एक स्थानीय होता है। ये जो हमने वहां करेक्शन किया वो बराबर है, वहां ये वाक्य रह गया। जघन्य अनुभाग बंध एक स्थानीय होता है तथा अजघन्य अनुभाग बंध एक स्थानीय होता है, द्विस्थानीय होता है, त्रिस्थानीय होता है, चतुस्थानीय होता है। चार अघाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध चतुस्थानीय होता है, अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध चतुस्थानीय होता है, त्रिस्थानीय होता है और द्विस्थानीय होता है, एक स्थानीय नहीं लिया। जघन्य अनुभाग बंध द्विस्थानीय होता है, यहाँ भी एक स्थानीय को छोड़ा। तथा अजघन्य अनुभाग बंध द्विस्थानीय होता है, त्रिस्थानीय होता है और चतुस्थानीय होता है। विशेषार्थ, घाती कर्मों में चतुस्थानीय से लता दारू अस्थि और शैल रूप, त्रिस्थानीय से लता दारू और अस्थि रूप यानी ऊपर का छोड़ा और द्विस्थानीय से लता और दारू रूप और एक स्थानीय से केवल लतारूप अनुभाग लिया गया, यह बंध की अपेक्षा बात चल रही है। अघाती कर्मों में अनुभाग दो प्रकार का है, प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त अनुभाग गुड़ खांड शर्करा अमृतोपम माना गया है तथा अप्रशस्त अनुभाग नीम कांजीर विष और हलाहल समान माना गया है। चतुर्थ स्थानीय में यह चारों प्रकार का त्रिस्थानीय में अमृत और हलाहल को छोड़कर शेष तीन प्रकार का वो प्रत्येक अपने अपने में छोड़ा ऊपर का, और द्विस्थानीय में गुड़ और खांड रूप या नीम और कांजी रूप अनुभाग लिया गया है। अब यही रुकेंगे हम।